समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी रेनू कटारिया। नमस्कार रेनू।
नमस्कार फरहत, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क ऑन दिस ब्यूटिफुल संडे मॉर्निंग। एंड वी होप दैट ऑल आर लिसनर्स आर लिसनिंग टू अस, दो दे मे बी इन देयर बेड स्टिल, बट प्लीज डू लेंड अस योर इयर्स वेयर इन वी आर गोइंग टू गिव यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल information related to this day, that is the 5th of April. So let's begin with the news first, Farhat.
जी रेनू, सबसे पहले शुरुआत करते हैं महिला आरक्षण से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले 2023 में पारित कानून को 2029 से लागू करवाने के लिए संसद का बजट सत्र 3 दिन बढ़ा दिया गया है।
जो कानून हमने पारित किया है 33% महिलाओं के लिए, 2029 में लोकसभा के चुनाव से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए, 33% बहने पार्लियामेंट में आकर के बैठे, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है।
केरलम के तिरुवल्ला में एक चुनावी रैली में श्री मोदी ने कहा कि बजट सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को फिर आयोजित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तेलंगाना में लोकसभा सीट की संख्या में कोई कमी न हो। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से महिला सशक्तिकरण से जुड़े इस मुद्दे का पूर्ण समर्थन करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन किए जाएंगे।
A total of 345 Indian fishermen stranded in Iran amid the ongoing West Asia conflict arrived safely in Chennai yesterday evening after being evacuated through Armenia. According to the Ministry of External Affairs, the fishermen were brought back as part of India's continued efforts to ensure the safety of its nationals in the conflict-affected region. Earlier in the day, External Affairs Minister S. Jaishankar, in a social media post, expressed gratitude to the Armenian government for facilitating the evacuation and thanked his counterpart Ararat Mirzoyan for enabling the safe transit of Indian nationals from Iran to India amid the conflict.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के पास समझौता करने या जल डमरू मध्य खोलने के लिए अब केवल 48 घंटे बचे हैं। उन्होंने ये चेतावनी दी है कि समय सीमा पूरी होने पर ईरान को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक समाधान की भी बात दोहराई। हालांकि ईरान ने संघर्ष समाप्त करने के अमरीकी प्रस्ताव को एक तरफा और अनुचित बताकर खारिज कर दिया है।
The University Grants Commission, UGC, has informed that the data submission process for QS World Rankings 2027 has begun. In an official letter, the UGC requested all eligible higher educational institutions to submit the required institutional data, including sustainability-related information, through the QS Hub portal before 12th of April for appropriate representation in the global rankings. The QS World University Rankings, compiled by Quaccarelli Simons, are a leading global assessment of higher education institutions focusing on academic excellence, employability, research impact, and internationalization.
सीमा सड़क संगठन बीआरओ के चेतक परियोजना ने कल राजस्थान के बीकानेर में अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि 1980 में आज ही के दिन स्थापित इस परियोजना ने राजस्थान, पंजाब और उत्तरी गुजरात में बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मंत्रालय ने बताया कि बीआरओ द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचा सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास में योगदान दे रहा है।
Moving on to sports, in the World Archery Para Series, teenage quadruple amputee archer Payal Nag defeated world number one Sheetal Devi to win gold in the compound women's final in Bangkok. The 18-year-old secured 139-136 victory in the compound women's final as India signed off with 16 medals, including 7 gold, 5 silver and 4 bronze. Among other highlights, Toman Kumar clinched gold in the compound men's event while Bhavna won the recurve women's title. Toman defeated Australia's Jonathan Milne 146-142 in the compound men's final while Bhavna outclassed Thailand's Phattaraporn Pattaveo 6-0 in the recurve women's summit clash.
और अब बात की जाए आईपीएल की तो आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा और वहीं दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच खेला जाएगा.
एंड इन आर मस्ट अनाउंसमेंट वी आर प्लीज टू प्रेजेंट अ न्यू एपिसोड ऑफ आर प्रोग्राम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ फोकसिंग ऑन स्पैरो एंड बर्ड कंजर्वेशन. इन दिस एपिसोड वी फीचर environmentalist Rakesh Khatri, who shares insights on conserving sparrows in urban areas. He discusses his initiative of building nests to increase bird populations and his efforts to raise environmental awareness among the public.
गया कि एक टीचर ने मुझे एक बार रेडियो का एक इंटरव्यू सुनने के बाद फोन करा. उन्होंने कहा आप मुझे एक घोंसले का सामान भेज दें, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं 100 घोंसले लगाऊंगी. वो अब तक 1000 से ज्यादा घोंसले बना चुके. बच्चों को यही कहता हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज को आप अपने मम्मी पापा के एटीएम कार्ड की तरह यूज करिए, उतना यूज करिए जितनी जरूरत है. हमने उसकी फूड चेन खत्म कर दी ना. पहले घरों में गेहूं को धोया जाता था, सुखाया जाता था, फिर आटे के लिए भेजा जाता था पीसने के लिए. पापड़ बढ़िया सब घर में बनती थी. पैकेट फूड आने के बाद क्या हुआ, उसकी फूड चेन तो खत्म कर दी हमने.
प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ.
Yes, dear listeners, tuned into FM Gold today at 10:30 a.m. to listen to this insightful conversation. You can also listen to the program on the News On Air app and the News On Air official YouTube channel.
और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जहां हम रुक करेंगे महानगरों की खबरों का. तो सबसे पहले रेनु से जानते हैं चेन्नई में क्या है खास.
यस फरहत, यूनियन मिनिस्टर एंड सीनियर बीजेपी लीडर इन चार्ज ऑफ तमिलनाडु पीयूष गोयल रिलीज्ड व्हाइट पेपर ऑन तमिलनाडु फाइनेंशियल क्राइसिस. स्पीकिंग टू द मीडिया एट चेन्नई ऑन सैटरडे ही सेड दैट पब्लिक फाइनेंसेस वर पुश्ड इनटू डिस्ट्रेस ड्यू टू मिसमैनेजमेंट. डिस्क्राइबिंग द सजेशंस गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही सेड that a strong narrative is needed to counter the narratives by the DMK-led SDA. He said that despite receiving substantial devolution from the centre, including additional funds of rupees 80,000 crore rupees during Narendra Modi-led government's tenure.
और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की. तो आज सुबह से ही यहाँ पर यातायात डायवर्जन और प्रतिबंध लागू है क्योंकि आज आयोजित की जा रही है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएनबी सोल्जरथॉन हाफ मैराथन. दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार मेहरचंद मार्केट, कोटला रेड लाइट, जोरबाग क्रॉसिंग और लाला लाजपत राय कट समेत कई स्थानों पर गाड़ियों को डायवर्ट किया जा रहा है और बीपी मार्ग और लोधी रोड पर भी सुबह 5 बजे से 10 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. बीपी मार्ग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स रोड और आसपास के इलाकों में जाम की आशंका जताई गई है. आपातकालीन वाहनों को आवागमन की अनुमति होगी लेकिन उन्हें भी भीड़भाड़ वाले मार्गों से बचने की सलाह दी गई है. यात्रियों को प्रभावित मार्गों से बचने, समय से पहले यात्रा की योजना बनाने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है. वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है. मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराहट में गैस एजेंसियों पर भीड़ न लगाने अपील की है. श्रीमती गुप्ता ने बताया कि 3 अप्रैल को दिल्ली भर में कुल 1,11,000 से अधिक एलपीजी बुकिंग दर्ज की गई, जबकि तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा मिलकर 1,26,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई, जो बुकिंग से काफी अधिक है. उन्होंने ये भी बताया कि इससे ये स्पष्ट होता है कि लंबित बैकलॉग को तेजी से खत्म किया जा रहा है और आपूर्ति श्रृंखला सुचारू रूप से काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक के लिए सरकार ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
And moving on to Bengaluru, the Bengaluru North City Corporation is actively removing dry and dangerous trees and branches across its jurisdiction to ensure public safety, said Commissioner Pomala Sunil Kumar. The drive aims to prevent accidents during heavy rains and strong winds from September 2, 2025 to March 31, 2026. A total of 183 dangerous trees and 2,508 branches were removed across two zones. The corporation will continue inspections and removal operations. Citizens are urged to report hazardous trees via helpline 1533-94806857 05 or through WhatsApp with GPS enabled photos. And another news from Bengaluru. Police arrested 13 persons, including 9 juveniles, for mobile phone theft during the IPL 2026 RCB versus SRH match at M. Chinnaswamy Stadium on March 28 within Kabban Park Police Station limits in Bengaluru. Through operations conducted between March 31st and April 3rd, police recovered a total of 75 stolen mobile phones from the accused. The arrested individuals were produced before court, while the juveniles were sent to a government observation home. Further investigation is going on.
और रेनु अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं. महाराष्ट्र के ठाणे जिले के प्रशासन ने आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की आपदा प्रतिक्रिया बलों के सहयोग से 2 सप्ताह का आपदा तैयारी अभ्यास शुरू किया है. कल अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 से 15 अप्रैल तक चलने वाले इस परिचय अभ्यास कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान समन्वय और प्रतिक्रिया क्षमताओं में सुधार करना है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है कि इस अभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें भी शामिल हैं.
Yes, and moving on to Hyderabad, Chief Minister Revant Reddy yesterday reviewed the comprehensive master plan for the development of the sacred Sri Gyana Saraswati Temple in Basra. The state government has allocated 225 crore rupees to transform this historic shrine situated on the banks of the Godavari River in Nirmal district into a world-class spiritual destination. During the briefing, the Chief Minister emphasized that all expansion works must strictly adhere to the Agama Shastra while preserving the temple's sanctity and the devotees' sentiments. Key directives included constructing expansive roads to accommodate future pilgrim surges and implementing strict regulations to maintain a divine atmosphere.
और अब पश्चिम बंगाल की बात. निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र के सहायक अतनु चक्रवर्ती को पद से हटा दिया है और कदाचार तथा कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. ये कार्रवाई चक्रवर्ती के एक विशेष राजनीतिक दल की गतिविधियों में शामिल होने की खबरों के बाद की गई है, जिसका संज्ञान आयोग ने लिया. एक अलग घटना में आयोग ने मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर के प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ भी कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है. इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने इसी घटना के संबंध में तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है. महानगरों की खबरों के बाद अब मौसम का हाल जान लेते हैं. तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की. आज बारिश का अनुमान है. यहां पर न्यूनतम तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा. 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई में लेकिन आसमान साफ रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. कोलकाता में आंधी के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. तो रेनू चेन्नई और बेंगलुरु हैदराबाद में कैसा रहेगा मौसम का हाल?
इट्स गोइंग टू बी क्लाउडी थ्रू आउट द 3 मेट्रोज. फरहत
जी,
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन. द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 26 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्रीज. बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म विद रेन. द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 22 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 32 डिग्रीज. And Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 25 degree and a maximum of 37 degree Celsius. So, Let's go on to our next segment, Farhat. On let's first tell the listeners which day we are observing today. So today is observed as the International Day of Conscience, a reminder that peace begins with our everyday choices and the way we treat others. The day encourages people around the world to listen to their inner voice, act with kindness, and promote understanding and respect in society. It highlights how compassion, ethical thinking, and collective responsibility can help build a more peaceful and harmonious world for everyone.
जी बिल्कुल रेनू, ये दिवस हमें याद दिलाता है कि शांति की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं बल्कि हमारे छोटे छोटे विचारों और व्यवहार से होती है। ये दिन हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने, सही और गलत के बीच समझ विकसित करने और दूसरों के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा भी देता है। जब हम अपने निर्णयों में मानवता, सम्मान और सहानुभूति को जगह देते हैं, तब समाज में विश्वास और सौहार्द अपने आप बढ़ने लगता है। तो इसीलिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस।
एंड फरहत, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी कि ये दिन जैसे हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, बट यू नो दिस शुड बी इन आर डीएनए कि हमें ये एवरी डे वी नीड टू रिमेम्बर दैट आर कॉन्शियस, यू नो, हमारी अंतरात्मा यू नो इज टेलिंग अस हाउ टू ट्रीट अदर्स एंड इट शुड नॉट बी टोल्ड बाय द अदर्स। इनफैक्ट हमारे अंदर ही इसे हमें इम्बाइब करके हमेशा चलना चाहिए।
बिल्कुल, और कहा भी गया कि बच्चे का जो भविष्य है माँ द्वारा ही निर्मित होता है, तो अगर जो माँ की बातों को अगर बच्चा जो है अपने अंदर रखता है और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा सही फैसला लेने में सक्षम होता है।
वेरी ट्रू फरहत, वेरी ट्रू। सो लेट्स मूव ऑन टू द ईयर 1764 नाउ। The British Parliament passed the Sugar Act, increasing taxes on American colonies and contributing to the American Revolution on this day.
1818 की अगर बात की जाए तो आज ही के दिन माइपो के युद्ध में जोसे डे सैन मार्टिन के नेतृत्व में चिली को स्पेन से आजादी मिली।
जी, एंड ऑन दिस डे इन द ईयर 1887 एनिस सुलिवन बिगन टीचिंग हेलेन केलर, स्टार्टिंग वन ऑफ द हिस्ट्रीज मोस्ट इंस्पायरिंग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स।
1919 में भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरिटाइम डे मनाया जाता है। ये दिन भारतीय कंपनी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के पहले जहाज SS लॉयल्टी की मुंबई से लंदन तक की ऐतिहासिक यात्रा की याद में मनाया जाता है, जिसने समुद्री व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार को चुनौती दी थी।
And on this day, 1930, Mahatma Gandhi reached Dandi during the historic Dandi March, defying the British Salt Law and providing a new direction to the freedom movement with the campaign marking the beginning of the nationwide civil disobedience movement.
और 1942 में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जापानी नौसेना ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पर हमला किया। वहीं 1956 में फिडेल कैस्ट्रो ने क्यूबा के राष्ट्रपति फुलगेंसियो बाटिस्टा के खिलाफ संघर्ष की घोषणा की, जिससे क्यूबा क्रांति की शुरुआत हुई।
On this day in the year 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak and Ronald Wayne founded Apple Inc., which later revolutionized global technology. And on 5th of April in the year 1984, basketball player Kareem Abdul-Jabbar broke the NBA all-time scoring record, becoming the highest scorer in league history at that time.
और अब हम अपने बढ़ते हैं आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो इस फेरिस्ट में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, जिन्हें आदर से बाबूजी के नाम से संबोधित किया जाता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं जगजीवन राम की। लगभग 50 वर्षों के संसदीय जीवन में राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और निष्ठा बेमिसाल रहा। उनका संपूर्ण जीवन राजनीतिक, सामाजिक सक्रियता और विशिष्ट उपलब्धियों से भरा हुआ रहा। सदियों से शोषण और उत्पीड़ित दलितों, मजदूरों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए बाबू जगजीवन राम द्वारा किए गए कानूनी प्रावधान काफी ऐतिहासिक हैं। जगजीवन राम का एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने कभी भी अन्याय से समझौता नहीं किया और दलितों के सम्मान के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे।
जी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला टुडे पे ट्रिब्यूट टू जगजीवन राम ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट मिस्टर शाह हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द फॉर्मर Deputy Prime Minister of India to the freedom struggle and remembered him for firmly confronting divisive forces while opposing religious conversion. Describing Jagjivan Ram as a pioneer of social justice, the Home Minister said that the struggle of the eminent leader for the rights of weaker and deprived sections of the society will continue to inspire generations.
और अब हम बात कर रहे हैं गुजराती भाषा के जाने माने साहित्यकार पन्नालाल पटेल की. उन्हें रणजीत राम पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. वे गुजराती के अग्रणी कथाकार रहे. लगभग 6 दशक पूर्व गुजराती साहित्य जगत में उनका एक अलग ही चमत्कार माना जाता था. जीवी पन्नालाल पटेल के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है. ये उपन्यास राजस्थान और गुजरात के सीमा प्रदेशवर्ती एक गांव पर आधारित है और इसमें आंशलिक उपन्यासों की परंपरा का नितांत स्वाभाविक और अत्यंत भव्य रूप देखने को मिलता है.
And today we are remembering the legendary Eldred Gregory Peck, who was an American actor. He was one of the most popular film stars from the 1940s to the 1960s. Peck received 5 nominations for Academy Award for Best Actor and won once for his performance as Atticus Finch in the 1962 drama film To Kill a Mockingbird. And Gregory Peck Farhat won an Oscar for his brilliant performance as the Southern lawyer who defends a black man accused of rape in this film version of the Pulitzer Prize winning novel. The way in which it captures a time, a place, and above all, a mood makes this film a masterpiece. So, you know, the setting is a dusty southern town during the Depression. A white woman accuses a black man of rape. Though he is obviously innocent, the outcome of his trial is such a foregone conclusion that no lawyer will step forward to defend him except Peck, the town's most distinguished citizen. His compassionate defense cost him many friendships, but earns him the respect and admiration of his 2 motherless children.
Hello, gentlemen. In this country, our courts are the great levelers. In our courts, all men are created equal. I'm no idealist to believe firmly in the integrity of our courts and of our jury system. That's no ideal to me. That is a living, working reality. Now, I am confident that you gentlemen will review without passion the evidence that you have heard, come to a decision, and restore this man to his family. In the name of God, do your duty. In the name of God, believe Tom Robinson.
Yes, his compassionate defense cost him many friendships, but earns him the respect and admiration of his 2 motherless children. What a lifetime role. And today we're also remembering Ruth Elizabeth Betty Davis, who was an American actress of film, television and theater with a career spanning 60 years and 100 acting credits. She's regarded as one of the greatest actresses in Hollywood industry. And she was the first woman to receive a Lifetime Achievement Award from the American Film Institute. And here we're going to listen to Kim Carnes singing Betty Davis Eyes, wherein she immortalized the hit song Betty Davis Eyes in the 1981 song.
Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes, she'll turn her music on. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes.
और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं अंतरजाल पर सक्रिय लेखकों में अग्रणी और चर्चित रविंद्र प्रभात को, जिनका आज जन्मदिन है. वे हिंदी कवि, कथाकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, स्तंभकार, संपादक और ब्लॉग विश्लेषक हैं. इन्होंने लगभग सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन किया है. व्यंग्य और गजल में रविन्द्र प्रभात की प्रमुख उपलब्धियां रही हैं. सन 1991 में प्रकाशित अपने पहले गजल संग्रह हमसफर से पहली बार वो चर्चा में आए.
Yes, today we are paying tributes to Spencer Tracy, who was an American actor noted for his natural performing style and versatility. One of the major stars of the Hollywood's golden age, Tracy won two Academy Awards for Best Actor from 9 nominations, sharing the record for nominations in the category with Laurence Olivier. Aur yahan par hum jo dialogue sunne wale hain, Farhad,
Ji.
It's going to be from the movie Guess Who's Coming to Dinner in 1967. It's a final scene wherein the speech of Spencer Tracy always makes everyone cry. Spencer Tracy poured his heart out in this speech. And his wife Catherine knew how sick he was, and I believe yahan par jo unke tears the, they were very real and heartfelt. And this movie will forever be a classic. Sadly, Spencer Tracy passed away around 2 weeks after the movie was finished. So let's listen into this final scene from the movie Guess Who's Coming to Dinner.
But you do know, I'm sure you know, what you're up against. There'll be 100 million people right here in this country will be shocked and offended and appalled at the two of you. And the two of you will just have to ride that out, maybe every day for the rest of your life. You can try to ignore those people, or you can feel sorry for them and for their prejudices and their bigotry and their blind hatreds and stupid fears. But where necessary, you'll just have to cling tight to each other. Anybody could make a case, and a hell of a good case, against your getting married. The arguments are so obvious that nobody has to make them.
और श्रोताओ, अब हम याद कर रहे हैं भारतीय फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की. 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक रही दिव्या. इन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से इंडस्ट्री में तहलका मचाया. बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके साथ काम करने को बेताब रहते, लेकिन वो बेहद कम उम्र में दुनिया को छोड़कर चली गई. दिव्या भारती की पहली हिंदी फिल्म विश्वात्मा थी, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय और खूबसूरती से सभी को मंत्रमुग्ध किया. फिल्म का गाना सात समुंदर पार आज भी लोगों के दिल में बसा हुआ है. इसके बाद दिव्या ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, जिनमें 16 और शबनम, दीवाना, बलवान, दिल क्या क्या कसूर और रंग प्रमुख है. तो क्यों ना फिल्म दिल का क्या कसूर से ये प्यारा सा गीत सुन लेते हैं.
आप जो मेरे नीत न होते, होठों पे मेरे गीत न होते, जीवन है क्या गीत बिना.
और फिल्म दीवाना में भी इन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की. तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म से ये गीत. और एक और बहुत ही प्यारा सा गीत है दिव्या भारती का, मिलने की तुम कोशिश करना. आइए सुन लेते हैं.
Today we are paying tributes to Charlton Heston, who was an American actor and political activist. As a Hollywood star, he appeared in almost 100 films over the course of 60 years. He played Moses in the epic film The Ten Commandments, for he received his first nomination for the Golden Globe Award for Best Actor. But here we are going to listen to his speech wherein he played the character of Mark Antony in Julius Caesar, and his performance in this version is often highlighted for its emotional weight, highlighting the betrayal, sarcasm, and loyalty to a friend.
Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus have told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault. Grievously hath Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest.
और आज भारतीय फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का भी जन्मदिन है। इन्होंने 2016 की सबसे सफल व्यावसायिक फिल्म किरिक पार्टी में अभिनय किया और 2021 में इनकी मूवी आई पुष्पा द राइस आते ही वर्ल्ड वाइड टॉप हिट रही।
और जो गर्विदा है उसको टाले तो तेरी झलक शर्फी श्रीवल।
And stay tuned, dear listeners, for coming up next is Samachar Prabhat, followed by Morning News. Thank you for tuning in. Have a superb Sunday.
Namaskar.